Bueno, no es miedo.
ఓం నమః సిద్ధేభ్య. ఓంకారం బిందు సంయుక్తం నిత్యం ధ్యాయంతి యోగినః కామదం మోక్షదం చేయో ఓంకారాయ నమో నమః. అవిరల శబ్ద ఘనౌఘ ప్రక్షాళిత సకల భూత కలంకా మునిగురు పాతీర్థరస్వతీ నరతనోదితాన్ అజ్ఞానతీరాంగానాం జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురుణమీలితం జీవే తస్మై గురువే నమః. పరం గురువే నమః. పరం పరాచార్య గురుభ్యో నమః. సకల్కల శ్రద్ధ్వంతకం శ్రేష్టాం పరివర్ధకం ధర్మ సంబంధకం భవజీవన ప్రతిబోధకారకం పుణ్యశకాత్వం పాపణాత్వమిదం శాస్త్రం శ్రీ సమయ సారీణాం ధ్యేయం అర్థమూల గ్రంథకర్తారా శ్రీ సర్వగ్రదేవా తదుత్తర గ్రంథకర్తారా శ్రీ గణధరదేవా ప్రతిగణధర దేవా శ్రీషాం వచనానుసార మహాత్రాజ్య ఆచార్యవర్ శ్రీమద్ భగవత్ కుందకుందాచార్యేంద్రిక్తం శ్రోతారా సావధానత్యా శృణవంతు. మంగళం భగవాన్ వీరు మంగళం గౌతమోగణి మంగళం కుందకుందాదేవ్ జైన ధర్మోష్టు మంగళం. సర్వమంగళ మంగళ్యం సర్వ కళ్యాణ కారకం ప్రధానం సర్వధర్మాణం జైనం జేతు శాసనం జైనం జేతు శాసనం. నమాసమయ సారాయ స్వానుభూత్యాచకాస్తే చిత్తభావాయ భావాయ సర్వభావాంతర సిద్ధే వందితు సవ సిద్ధే బహుమతుల మనోగంగ పత్తే భూషామి సమయ పావు మినమోతి కీలీ గణిదం. సమయ సాధి పరమాగం యాదవాద అధికార ఉస్మే భీ అంతిమ 15 కలర్ जिनमें उपाय और उपी दर्शाया गया है। समय सार जब टीका अमृत संग्रह के आदि ने प्रारंभ की प्रथम गाथा में और उसके भावानुवाद रूप पंडित जयसिंह जी खावड़ा सामने लिखा है। अभी भी क्या है इस ग्रंथ में तो कहते शुद्धात्मा को बतलाना ही अविधेय है। क्या कहना क्या किया क्या शुद्धात्मा ही सार वस्तु है। कैसे बतलाएंगे शब्द ब्रह्म के द्वारा वाक शब्दों के द्वारा बाच्यभूत ही शुद्धात्मा को दर्शाएंगे बतलाएंगे और उसका प्रयोजन क्या है कथन करने का कि सब जीव को जो शुद्धात्मा है स्वभाव की उसकी प्रकट अनुभूति प्राप्ति हो। प्रयोजन अज्ञान का अभाव होकर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो अतीन्द्रिय स्वाधीन सुख की प्राप्ति हो। तो ये बतलाने के लिए आचार्य ने कहा सबसे पहले अपने आत्मा में और जगत की आत्माओं में किसकी स्थापना कर लेना सिद्ध भगवान की। तो सिद्ध भगवान का स्वरूप जिनने समझ लिया अनंत अनंत सुख वैभव ज्ञान के साथ विराजमान और शरीरी ज्ञान शरीरी सदा काल के लिए जन्म मरण के स्तर से छूट गए एक परिपूर्ण शुद्धात्म तत्व जैसा अपने अंदर है वो उनका प्रकट होके वर्त रहा और जैसा उनका है वैसा अपना वर्ते ये अपनी भावना है। उसके लिए उपाय रुपये की बात थी तो उपाय निःशुद्धात्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण है और उसकी पूर्णता वो उसे की प्राप्ति है सिद्ध अवस्था की प्राप्ति है। तो यहाँ पर त्यागवाद अधिकार के माध्यम से परिषद के माध्यम से अमृत चंद्राचार्य देव ने जो एकत्र व्यक्त आत्मा को दिखाया जिसमें गुण भेद को भी निकाल दिया मात्र छिन्मात्र ज्योति स्वरूप अनंत धर्मात्मक अनंत शक्तियों का पुंज ऐसा प्रत्येक जीव है। प्रत्येक की जगह अपने को फर्स्ट पर्सन में ऐसा मैं हूँ ऐसा निर्णय कराया तो किस कोई तो शब्द के माध्यम से कराएंगे तो ज्ञान मात्र साक्षी द्वारा कराएं क्योंकि अनंत गुण धर्म निज आत्मा उनको शब्दों के द्वारा कथन किया जाए एक साथ सब धर्म नहीं कही जा सकते क्रम क्रम से कही जा सकते हैं और उसका स्वाद प्रत्यक्ष लेना है तो उन खंड भेद विकल्पों में स्वाद नहीं आता। इसलिए एक अखंडित आत्मा को अपने ज्ञान में प्रमेय भेद बनाना कौन से ज्ञान में जो वर्तमान में अपने पास प्रगत मति श्रुत ज्ञान की सामर्थ्य है और इतनी सामर्थ्य है कि हम जैसे मुनिराज भगवंत प्रचुर स्वसंवेदन की अतीन्द्रिय सुख की दशा का अनुभव भुगते आनंद भुगते हैं हम आप भी उस शुद्ध स्वभाव को जानकर यानी निज आत्मा को प्रथम जानकर उसके स्वभाव की सामर्थ्य को पहचान कर और उसमें अपनापन स्थापित करें तो वह जगत के और द्रव्यों आदि से उसकी दृष्टि हट जाए मेरी दृष्टि हट जाए। तो उसके लिए आचार्य जी ने कहा कि कंफ्यूज मत होना क्योंकि आत्मा में परस्पर विरोधी अनेक धर्म रहते हैं सुनने में कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई देते पड़ते हैं कि विरोधी हैं परमार्थ के दूसरे के साथ ही पूरक है कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर ऐसा उन धर्मों का स्वरूप है। लेकिन कुछ पर्याय में गड़बड़ी जो दिखती है मूलराज भी उसको किसके खाते में रखा जाए उसको आप आत्मा का स्वभाव की तो भिन्न बतलाते हैं लेकिन अनुभव में तो वो ही आ रहे हैं आकुल सारू और आप निराकुल स्वभाव की बात उपाय बताते हो कि स्वभाव निराकुल स्वभाव है और उसके आश्रय से पर्याय में निराकुलता का वेदन प्रकट किया जा सकता है। लेकिन कब होगा वो जब उसमें मेरा अहमपना यह मैं हूँ ऐसा निसंशित पने मैं पना उसमें अपने शुद्धात्मा में आए चेतन को है उपयोग रूप दिन मुहूर्त तीन मुहूर्त ही, और इसके बाद खुदगल धर्म धर्म काल इनते न्यारी है मेरे जीव का, जीव की चल न्यारी है, मैं जीव हूँ, जीवत्ता शक्तियों का पिंड हूँ। तो वो परब्रह्म भी मेरे ध्यान में जीव बनते हैं, बनते हैं, ये कोई क्या है दोष नहीं, ये गुण है, ये स्वभाव ज्ञान पर है। उसमें सारा लोग का लोग ज्ञान नहीं आए तो भी इसमें कोई भार तकलीफ नहीं हो सकती, किंतु अज्ञान दशा में अपने को ज्ञान स्वभाव का यथार्थ स्वरूप परिचित न होने से ऐसा भ्रम खड़ा होता है, उनका निवारण आचार्य ने वो चौदह बोलों की बात के द्वारा किया। अब जिसको ऐसा त्यागवाद से अनेकांत रूप वस्तु मैं स्वयं सिद्ध कारण परमात्मा हूँ ऐसा पकड़ में आ गया, तो आचार्य ने उसने कहा अब तुम ज्ञान जीव और ज्ञाता स्वयं ही हो, अन्य कोई नहीं, क्योंकि वो ज्ञान कहीं जीवों का गुलाम नहीं है कि तुम्हारा काम जानना है इसलिए तुम जानो। अरे तुम्हारे ज्ञान का स्वभाव तो ये सारा लोकालोक जानने में आए, तो ऐसा प्रश्न साजी ने सिद्ध किया है ज्ञान का ज्ञान तो क्या जो जीवों को ना जाने, और दूसरा जीवों का जीव तो क्या जो ज्ञान में न जाना। ये समर्पण स्वभाव वाले हैं, अरे दर्पण किसे कहें तो जिसके सामने जो कोई पदार्थ हो वो उसमें प्रतिबिंबित हो, उसको प्रतिबिंबित करना पड़े ऐसा कोई क्या उस दर्पण के अंदर है, क्या कोई ऐसा मेहनत करना पड़े और मुझे इनको झलकाना है, मुझे इनको जानना है, इनको जानना है, ये है ही नहीं। इसलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण कलश अब देखो अपन पढ़ते हैं दूसरे कत्थर जिसमें ये बात कही, यदि तुमने ज्ञान दे ज्ञाता स्वयं मैं ही हूँ ऐसा अगर तुम्हारे ज्ञान में निर्णय में आ गया तो समझ लो कि तुमने त्यागवाद का मर्म पकड़ लिया, समझ लिया। पढ़ते हैं अपन श्लोक, कलश जो है बहुत प्रसिद्ध है, कल अपन ने देखा था कि ये निर्णय तक पहुंचा है आचार्य ने, न द्रव्येण खंड्यामी, न क्षेत्रेण खंड्यामी, न कालीन खंड्यामी, न भावेन खंड्यामी, सुशुद्ध एको ज्ञान मात्रो भावो अहम अस्मि, अस्मि के साथ अहम आते हैं फर्स्ट पर्सन में, मैं क्या हूँ शुभ शुद्ध एक ज्ञान मात्र भाव ही, उसी को कलश में आकर भी कहते हैं। यानी उसकी पहले कौन सा देखो लिखा है इस कलश के ऊपर, ज्ञानी शुद्धने का आलम्बन लेकर ऐसा अनुभव करता है कि मैं अपने शुद्धात्म स्वरूप को ना तो द्रव से खंडित करता हूँ अर्थात उसमें भेद नहीं देखता, ना क्षेत्र से खंडित करता हूँ, ना काल से खंडित करता हूँ और ना भाव से खंडित करता हूँ, शुभ शुद्ध एक ज्ञान मात्र भाव हूँ, शुभ शुद्ध ज्ञान मात्र एक मात्र भाव हूँ। यदि शुद्ध ने से देखा जाए तो शुद्ध चैतन मात्र भाव में द्रव से काल भाव से कुछ भी भेद दिखाई नहीं देता, इसलिए ज्ञानी अभेद ज्ञान स्वरूप अनुभव में भेद नहीं करता। ज्ञानी माने जिसको ये बात समझ में आ गई कि मेरे अंदर में जो ज्ञानन क्रिया हो रही वो तो निरंतर अनादिनंत चलने वाली है, वो स्वभाव है, और उस ज्ञान पर्याय में ज्ञानन क्रिया में स्वयं पर प्रकाश तत्व धर्म है और ज्ञानी अज्ञानी का खरेखर भेद ही नहीं है, वो तो दर्पण की निर्मल स्वच्छता की तरफ में दोनों का युगपत अवभाषण हो रहा है। युगपत अवभाषण होने पर भी सदमत का उपयोग किसी एक देह से छिपता है तो अनादि की इंद्रिय ज्ञान का गुलामी होने, इंद्रियों का विषय रूपी खुद गए बस वही मेरे को जानने में आता है, अथवा थोड़ा आगम से तरफ से न्याय सिद्ध कर ली तो सर्वद्रव्यात्मक रूप जानने में आता है, लेकिन स्वयं मैं ही जानने में आ रहा हूँ ये उसके अंदर में अंदर से वृत्ति क्यों नहीं जन्म लेती, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भ्रांति पड़ी है कि देवों से ज्ञान होता है यानी उसने ज्ञान का स्वरूप प्रणवन स्वतः सिद्ध नहीं माना, तो इसको इसने आख्या दी कहती है, देखो पढ़ते हैं श्लोक, यूयम भावो ज्ञान मात्रो अमस्मी जीयोगे ज्ञान मात्रा सनैव जीयोगे ज्ञान कल्लोल वैदन ज्ञान ही यात्री मद वस्तु मात्रा। ज्ञान मात्र भाव से ही ज्ञान है, स्वयं अपना जीव है, स्वयं अपना ज्ञाता है, इस अर्थ का ही काव्य है। क्या कहते अयम ज्ञान मात्रा भावा अहम अस्मि का ये ज्ञान मात्रा एक न दिया, ये शब्द है ना, जी माने जानना चाहिए तथ्य में आते हैं और जी माने जानने योग्य पदार्थ में भी आते, दोबारा है ना जी शब्द। देखो जो है ज्ञान मात्र भाव में हूँ वह जीवों का ज्ञान मात्र ही नहीं जानना चाहिए। और इसमें जी क्यों पकड़े हैं, इंद्री ज्ञान वाले ने अज्ञानी ने, जो अपने ज्ञान में झलकते हैं झलकते हैं प्रतिभा से टूटे ज्ञान नहीं आते, यानी पर जे को ही जे मानता है, स्वयं ज्ञान को स्वयं जायक को जे नहीं मानता नहीं पकड़ता। भले उसमें प्रगत शक्ति सब है वो बतलाएंगे, जो यह ज्ञान मात्र भाव में है वह जीवों का ज्ञान मात्र ही नहीं जानना चाहिए। ये ज्ञान कल्लोल बलगन परंतु जीवों के आकार से होने वाले ज्ञान की कल्लोलों के रूप में परिणमित होता हुआ वह ज्ञान ये ज्ञाति मत वस्तु मात्रा दिया, ज्ञान ये ज्ञाता मय वस्तु मात्र जानना चाहिए। अर्थात स्वयं ज्ञान स्वयं ये और स्वयं ज्ञाता, इस प्रकार ज्ञान भी ज्ञाता रूप तीनों भावयुक्त वस्तु मात्र जानना चाहिए। ये उपदेश है आचार्य का, और अपन इसको अगर विचार करेंगे तो अपने को ख्याल में बात आ जाएगी कि मेरे में प्रमुख तो धर्म शक्ति है, उसका काम क्या है। तो एक ऐसा पहले फॉर्मूला लिखो, प्रमाता इज इक्वल टू प्रमेय प्रमाण प्रमेय प्रमिति संजीव, ज्ञाता इज इक्वल टू ज्ञान जे व्यक्ति, अनुमाता इज इक्वल टू अनुमान अनुमेय अनुमिति, ध्याता इज इक्वल टू ध्यान जे ध्यायति। इतना ही सब एक साथ है, जो प्रमाता ज्ञाता अनुमाता ध्याता है वह तो पूरा पदार्थ आत्मा है, वो आत्मा ही ज्ञाता है ध्याता अनुमाता, ऐसा भी ज्ञाता है। उसमें तीन में ज्ञान पर्याय यानी जानने का साधन, और उसमें ये जानने में आ रहा विषय वो कहला है ये, और उसके जानते ही नियम से आकर कहते हैं उसका फल हर के अनुसार आता ही आता है। तो जानने का क्रिया ऐसा होते नहीं कि जानने में आए कोई पदार्थ, भले आप उपेक्षा हो कुछ हो लेकिन जानने में आएगा तो उसका फल लिखा। अगर तुमको ज्ञान सम्यक हुआ प्रमाण ज्ञान हुआ तो सूत्र भी आचार्य ने अज्ञान निवृत्ति ये उपादो ये उपादान उपेक्षा से फल, ज्ञान हुआ आत्मा का अज्ञान था और जब ज्ञान हुआ कि मैं ही ज्ञान दे और जाता हूँ तो तत्काल उसका अज्ञान निवारण हो गया। और एक पल जब अज्ञान हट गया, अज्ञान क्या था कि मैं अपने आप को गेहूँ से ज्ञान होता है मानता था अथवा इंद्रियों से ज्ञान होता है मानता था, इत्यादि प्रकार के अनेक भूलें चलती थी, अथवा मेरे में गुणगुणी का भेद दिखता था, अथवा मेरी सुवा में राजदीप दुखे पड़े गए ऐसे दिखता था। ये सब अज्ञान का निवारण इस ज्ञान ज्ञाता जीव के स्वरूप को समझ लेने से निवृत्त हो जाता है, अज्ञान निकल जाता है। तो कहा अज्ञान की निवृत्ति और हे का त्याग और उपाधि का ग्रहण और उपेक्षा, उसमें फल लिया कि जब तक हम अज्ञान से जो हे था उसको उपाधि जान रहे थे और जो उपाधि था उसको समझ नहीं रहे थे, हे मान रहे थे, इसलिए फल उसका क्या निकलता था, अकुल था। तो आचार्य जी यहाँ पर कहते हैं कि ज्ञान मात्र जो भाव मैं हूँ वो मात्र सृष्टि का मिलता सर्वद्रव्यात्मक लोक मेरा जी, यानी मैं ज्ञाता और दुनिया मेरी जी, क्योंकि कर्ता कर्म की बुद्धि हटाई और ज्ञाता तुम ज्ञाता ही है कर्ता नहीं है ये स्थापित कराया क्या जी ने, तो इसको क्या पकड़ने आ गया, मेरा काम जानना और किसको जानना। तो दो गे थे स्वजे और परजे, उसने जो इंद्रियों की आदत पड़ी थी परियों की उससे ही उसका काम ही मेरा है जानने का। तो मैं ज्ञाता दुनिया मेरी गई सद्रव्यात्मक, उसमें अन्य जीव धर्म धर्म आता कला सभी जानते खुद गल। तो यहाँ पर ये जीव रुक गया जब मैं जानता हूँ कि इसमें क्या भूल होती, कोई टीवी के सामने बैठ करके कोई समाचार आदि कुछ भी देखता है तो उसमें ज्ञान ज्ञाता जो है ना कि शुरू वो जानने वाला है तो जान रहा है कनु, और ज्ञान किससे हो रहा है, टीवी से हो रहा है ना नहीं हो रहा है, ज्ञान किससे होता है। अपन कम से कम इतना तो अभ्यास के पकड़ में आ गया कि उससे ज्ञान नहीं होता, तो उसका पहले न्याय में ये लक्ष्य कराया जाता है कि जीवों से ज्ञान क्यों नहीं होता, इसलिए नहीं होता कि ज्ञान के उभार के अनुसार फिर उत्सव के अनुसार ये ज्ञान में आते रहते, तुझे जानने का कुछ करना नहीं पड़ता, लगता करना पड़े वो स्वभाव नहीं होता, ज्ञान को जानने जाना पड़े, जानो तो सब आत्मा को नहीं जाना तक, तो आत्मा को जानना तो पड़ेगा ना, आत्मा को जानना पड़ेगा कि नहीं। तो आचार्य कहते हैं कि दीपक को दृष्टांत समझा दिया छत्तीस जाता प्रसंसार में, और सैद्धांतिक ग्रंथ है वो विश्व का ज्ञान तत्व प्रज्ञापन गई तत्व प्रज्ञापन समझ कि दीपक माने पर प्रकाशित सामान्य नहीं आती, और दीपक को कौन प्रकाशित करे, जब दूसरा दीपक ला उस दीपक ने तो अन्य को प्रकाशित किया, स्वयं को प्रकाशित नहीं कर रहा ना, तो दूसरे दीपक की जरूरत पड़ेगी, और दूसरे को प्रकाशित करने के लिए तीसरे की जरूरत पड़ेगी, ये अनावस्था दोष है। तो वो कहता है सफल प्रकाशक ज्योति की दीपक समकर ही, तो ऐसे में जो जानने वाला पदार्थ संकेतन संवेदन जिसका धर्म है स्व संवेदन भी उपयोग लक्षण वाले कई धर्म है कर्म है कार्य है, इसको भीतराग स्व संवेदन नहीं हो रहा है ज्ञान दशा में, सराग स्व संवेदन हो रहा, ये बात इसी समय साहब जी ने 93 गाथा की टीका में देखना चाहती है, जैसे उपयोग लक्षण है तो लक्षण का कार्य स्वर पर प्रकाशक, तो स्वर पर प्रकाशक नहीं तो कहते अगर वेदन ना हो तो वो ज्ञान क्या, कि जो जानो और उसको मालूम नहीं पड़े कि अच्छा है कि बुरा है दुख है कि सुख है, वो तो जड़ वक्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो ज्ञान ज्ञाता जी ऐसा नहीं हूं, तो उसके लिए दृष्टांत देता हूं मैं सदैव, जब मैं उधर पढ़ाई करता था हॉस्टल में था तो दर्पण पे एक चिड़िया आकर के बैठती थी, और दर्पण में जो चिड़िया उससे लड़ा करती थी, मैं लेकर देखता था पास से, होता ना टेबल पे अपने स्टडी टेबल जो रहती छोटी, तो बोलो अंदर में चिड़िया है कि नहीं इसकी दर्पण में सिर्फ दर्पण की चिड़िया है, पर वो लड़ सकती रही है, पहले दो चिड़िया है कि नहीं, हाँ दो हैं अभी घबरा मत, दो हैं नहीं है दो नितिन भाई, अरे भिन्न का प्रतिबिंब लेकिन अंदर में जैसा बाहर है पदार्थ वैसा ही तो उसमें प्रतिबिंबित होगा, अन्यथा तो नहीं होगा ना, नहीं तो वो दर्पण का दर्पण ठीक है चल मैं, तो आपने कहा वो दर्पण की चिड़िया ये बात, अब वो घंटों से लड़े और फिर उड़ जाए थक जाए, इन्हें उत्थान की बात करो उसने 64-65 की जब पकने आए तो उसने देखता था खिड़की से आए कि लड़की रहे भाग जाए, फिर ہم دو دن بعد لوٹے آئے اوقات کی, فصلوں کا تو کھڑکی پہ کوئی گلہری آدمی تو آ نہیں سکتی, تو دیکھا تو وہ چڑیا درپن کے سامنے الٹی مری پڑی. بتائیں گے آپ باہر پڑی مری چڑیا, اس کو کس نے مارا؟ نوین بھائی, بھیتر کی چڑیا نے اس کو مارا یا باہر کی چڑیا نے بھیتر کی چڑیا کو مارا؟ اور پہلے کون چڑیا مری؟ کس نے کس کو مارا؟ کہیں بتاؤ. جو اس بات واسطو میں جو چڑیا ہے ادھر لو, اور وہ ابھیان سے کس کے اندر میرا کوئی پرتبندھ ہے, اور اسے لڑ لڑ کر کے تھک تھک کر کے اور وہ مر گئی. ایسے ہی میں میرا یہ اپیوگ کیا کر رہا ہے, ان پدارتھوں میں سکھ ہے, ان میں اپیوگ کو چوک کی طرح مارتا ہے, اس کو ہڑپ لوں, اس کو جان لوں, اس کو جان لوں, اس کو کر لوں, اور پھر وہ جو راگ دوش اتپن ہوتا ہے سرجان دشا میں, اس کا پھل آتنتا کو بھوکتا ہے. اور یہاں بھی سنت بھی چل رہی تو آتنتا آدمی ہے کہ نہیں؟ ابھی آگے کل سو میں کہیں گے ہے آتنتا جی سدھی کریں گے راگ دوش کی ہے, وہ اجان کا پرتیفل ہے. لیکن جانی ہو جانے کے بعد بھی کمزوری بس کچھ راگا دکھ ہوتے ہیں, ہوتے ہیں, لیکن وہ پن ان کا سرسوامی سمبند اس میں نہیں رہتا, اس لیے وہ پرگرو کی بھاتی پروتی کی بھاتی ویسا دکھ اس کو نہیں ہوتا جو اجانی کو ہوتا, لیکن اتنا استھرتا کا دکھ ہوگا. دیکھو اس میں پڑھتے ہیں بھاوارتھ میں, جان ماتر بھاو جاتری کریا روپ ہونے سے جان سوروپ ہے, اور وہ نمن پرکار سے جے روپ ہے. کیسا؟ وہ جے جان سے بھن ہے, یہ جان میں پرویش نہیں ہوتے. جیوں کے آکار کی جھلک جان میں پڑنے پر جان دیاکار دکھائی دیتا ہے, پرنتو یہ جان کی ہی ترنگیں, یہ جان ترنگیں ہی جان کے دوارا جات ہوتی ہیں. اس پرکار سوئن ہی سوتا جاننے یوگ ہونے سے جان ماتر بھاو ہی جے روپ ہے, اور سوئن ہی اپنا جاننے والا ہونے سے جان ماتر بھاو ہی جاتا ہے. اس پرکار جان ماتر بھاو جان جے اور جاتا ان تینوں بھاووں سے یکت ہو سامان وشیش کرو وستو ہے. جو سامان وشیش آپ نے پتا ہے نا, جان جے اور جاتا ان تینوں نے بھاووں سے یکت ہو کیا ہے؟ سامان وشیش کرو وستو ہے. ایسا جان ماتر بھاو میں ہوں اس پرکار انبھو کرنے والا پروش انبھو کرتا ہے, ارتھات پر کا انوبھو آدی کہنا کتھن ماتر اپچار ہے. ایک نکل کرو پرتیک جی کو اپنی پریائے ہی جاننے میں آتی ہے, اپنی پریائے ہی جیون میں آتی ہے, نہ سرکاری درو ویدن میں آتا ہے نہ پر وسو ویدن میں آتا ہے. یہ دویدک سمبندھ اپنی جان پریائے میں اور جو اس میں سو پر پرکاشن ہو رہا ہے نروکلپ انوبھو کے کال میں بھی, وہاں پر جو شانتی سمتا پرگٹ ہوئی آنند پرگٹ ہوا وہ بھی جان کا جی ہے, وہ بھی جیون میں آتا ہے. تو کہتے نا کہ انوبھو ہوا تو اس کے ساتھ ہاتھ مول ہونا چاہیے کیندری شکتی انوبھو. جیسے اسی سمے کار میں پانچویں گاتھا میں کہا کر دیں سیاس پد مدرا کی مدر, وہاں پر بھی ساودھان کیا ارہنت بھگوان کا جو پرماتم ہے اس سے پہلے اس آتما کو جانو دروپنے گنپنے پریاتے پورا وستو سمجھ لینے کے بعد یوکتی پرمان لے آتما کو یوکتی اور جانیوں کا اپدیش, اس سے بھی آپ کے جان میں ہمارے آپ کے جان میں جیسا سمیہ جانی کو نشچے نر انبھو انبھو پوروک ہوتا ہے, ویسا سامانیہ جان میں سمیہ جانی وقت نسنت پنے نرلے آ جانا چاہیے, تب اس کو اپنے جائے کی مہیما آتی اور اس کا اپیوگ سرو سنمک ہوتا ہے, انتہ وہ شاستر سنمک رہے گا, شاستر جان ہوگا ادھر یہ ہے ادھر یہ ہے. تب تو گرو کو ایک بار پرشن میں آ چکا ہے کہ جب اس کو جانی کی دیکھنا جانی سنتا ہے कोई कहे वो तो ज्ञान लिखा है, ज्ञान लिखा नहीं, वो तो कुसंग गति से लिखा है, सत्संग गति से सुनने से अपना होकर के भी पढ़ते जीत जाते हैं। तो उसके लिए वहां कहा कि जब कोई बात अंदर से आए और वो मुझे इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैंने अंतःकरण से उसको स्वीकार होता जाए और एकदम ज्ञानी गुरुओं की कृति और ये अंतःकरण की बात आती एमत है, ऐसा ही है। और ऐसा जब उसके सामान्य ज्ञान में है, अभी एक प्रकार का तो लिखा ज्ञान जब तक अनुभूति नहीं, तो ऐसा तक कहा है ना वो ज्ञान सम्यक है ना वो ज्ञान मिथ्या है। ये जो दशा वाला ज्ञान है और उसको मालूम पड़ गया कि रॉन्ग क्या और राइट क्या है, तो ये मालूम पड़ जाने पर वो रॉन्ग को अब एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसमें मैं पना नहीं रखेगा और जो राइट उस तरफ ही उसका झुकाव होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से वो अपने स्वरूप की महिमा आती है तो उसका उपयोग स्वसन्मुख होने लगता हो जाता है। उपदेश में कहेंगे स्वसन्मुखता का प्रयत्न करो, प्रयास करो। तो ये उपदेश है, ये कब होगा जब स्वयं को अपने ज्ञान में अपने ज्ञान की महिमा सर्वोपरि आ जाए। अचिंत शक्ति स्वयं देव, अचिंत शक्ति वाला मैं हूं और क्या हम भी नहीं, और भी नहीं चिन्मात्र चिंता मणि चेतमात्र सर्वात सिद्धार्थ तैयार दत्ते ज्ञानी जिमन्यत्व परिग्रह। ज्ञानी को और क्या चाहिए जब उसको चैतन्य सदन का अवलोकन जी भर से हो गया कि मेरे चैतन्य घर में कोई प्रकार की अवलता नहीं, सब प्रकार की सदवर्ता है, मुझे कहीं बाहर बांटने झांकने की जरूरत नहीं। ऐसा पहले दो तो कुछ को निर्णय निश्चय होना चाहिए, वो हो गया तो उसका उपाय बनने वाला है और उपाय बन गया तो उसे भी प्रकट हो जाएंगे। तो आचार्य ने कहा, जैसे मैं बता रहा था प्रश्न का 36 जाता बहुत अच्छा संबंध है समय में। एक व्यक्ति ने कहता है, आपने कहा आत्मा ज्ञान से देवों को जानता है, तो अमृतचंद्र आचार्य को ख्याल में आ गया कि ये ऐसा मान रहा है आत्मा द्रव अलग है, जानने वाला ज्ञान गुण अलग है और जानने की क्रिया अलग है, पर भी संबंध। तो अमृतचंद्र आचार्य ने उसके अंदर के भाव को उभारा। आप ये कहना चाहती हो कि देवदत्त नाम का व्यक्ति कुदारी से लकड़ी को काटता है, तो देवदत्त व्यक्ति अलग है, काटने का साधन कुदारी अलग है और कपवानी क्या काटने की क्रिया वो लकड़ी में उसे अलग है। ऐसा तुमने ये जो समझा उसका अर्थ ये हुआ कि आत्मा को ज्ञान रहित रखा माना तुमने, क्यों ज्ञान को अलग रखा है माना कुदारी की तरह और जानने की क्रिया अन्य की हुई। तो इसका मतलब हुआ ना तो वो आत्मा ज्ञान स्वरूप सिद्ध हुआ और ना ज्ञान गुण बिना आधारभूत द्रव्य से ज्ञान गुण की सत्ता सिद्ध हुई, दोनों को अतिकंपन आ जाएगा, फिर किसमें जानना होगा, जानना ही नहीं होगा तो फिर कैसे समझे। तो आचार्य जो कहते हैं सुनो, अगर तुम ऐसा मानते हो कि आत्मा माने वो देवगत ज्ञान कुल्हाड़ी उठा करके और इन देवों को जानने जाता है, जानता है, तो फिर ज्ञान की मर्जी है ना, वो आत्मा से क्यों जुड़े, वो खंभे से राखर से घरे से किसी से भी जुड़ जाएगा टेबल कुर्सी से, वो जानने का काम शुरू कर देगा ना। ये आत्मा और ज्ञान का क्या है, ऐसा तर्क दे करके सिद्ध किया कि वस्तुतः शब्दों में इतनी ताकत है भेद करके वो समझाया जाए है। तो आत्मा द्रव्य गुण और पर्याय का भेद वस्तु। अब ये सिद्ध करने के बाद और फिर 36वीं आठवीं बात की कि हमको स्वयं ज्ञायता के होने में बाधा दिखती है, कोई भी पक्ष ऐसा दिया कि जे दो है स्वगे और परगे। और आपने बात सुनी थी कि स्वयं को स्वयं के द्वारा स्वयं जानने में आ रहा है, परंतु मेरे को तो नहीं लगता मैं जानने में आ रहा हूँ, स्वज्ञायता के होने में विरोध दिखाई देता है। तो दो प्रश्न पूछे हमने चंद्र का, व्यक्ति क्रिया और उत्पत्ति क्रिया, पर्याय में से क्रिया उत्पन्न नहीं होती ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो ज्ञानन क्रिया हो रही है वो बिना आधार को द्रव से होती है, हो सकती है। तो दृष्टांत या दीपक का कि जो दीपक प्रकाश कर रहा तो आपने पकड़ लिया जो ऊपर का प्रकाश तत्व उसमें है और स्वयं का प्रकाशन धर्म उसमें नहीं है, तो सिद्ध करके जिसमें स्वयं प्रकाशक नहीं है वो तीन काल में पर प्रकाशक हो नहीं सकता। जो स्वयं प्रकाश पुंज है पर अपने को तो अंधकार में देखे और दुनिया के परिजयों को जिनमें प्रकाश नाम का गुणधर्म नहीं है उन देवों को प्रकाशित करने वाला मानो, ये अज्ञान देना इस गोष्ठी से अपने अंदर में निकलना चाहिए कि सचमुच में मैं ही ज्ञाता, मैं ही ज्ञान और मैं ही ये। और ऐसा जानने से जो अज्ञान था कि इंद्रियों से ज्ञान होता है, परिजयों से ज्ञान होता है, ये भ्रांति निकाल देना। ज्ञान स्वयं जानन स्वभाव वाला होकर के जाने 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 तेनु नाम ज्ञान, जनाए जनाए तेनु नाम ये। और एक दिया उसी ने गाथा की उसमें सुखनों का दिन गुरुदेव ने खोला कि ज्ञान का ज्ञानक तो क्या जो देवों को ना जाने, और देवों का देव तो क्या जो ज्ञान में ना जाना। तो ये पूरा ज्ञान तत्व देखकर ये सिद्ध करता है कि ये समर्पण स्वभाव वाले हैं। हम दर्पण के सामने जाए और दर्पण मुझे ना झलकाए, चेतन भाई सिर्फ तुम्हें झलकाए, ऐसा उसमें है कुछ राग द्वेष। ज्ञान में अज्ञानी के ज्ञान में भी कोई राग द्वेष नहीं, वो ज्ञान में ज्ञानी है बस। तो उसमें क्रिया की तरह वो झलक तो रहे, वो भी उसका स्वभाव है, अनेकाकार रूप से सब झल, लेकिन उससे उसके अंदर में कोई मलिनता उत्पन्न नहीं होती, हो तो उसकी स्वभाव को प्रसिद्ध करता है। तो फिर भ्रांति कहाँ खड़ी हो गई कि मैं नहीं झलक रहा बाकी सब झलक। तो यही गुरुबुद्धि जीव को दूर करना है। तो ये समझना ये ज्ञान साधक संसाधन का और कर्म कर्ता कर्म कर्म उसमें सुपन ले तो बिजली लगाए साधक समर्थवान कर्म कर्म आएगा ना अभी शक्ति उसने अभी साधक समर्थ वर्ग डाला है जय न्याय ने भी ये बात सिद्ध की। तो ज्ञान ही व्यापारी है सिद्ध किया पहले तो स्वपूर्वाद व्यवसाय उनका ज्ञानम प्रमाण। ज्ञान जो अपने आप को जानता है और अपूर्वार्थ को जिसे पहले किसी सच्चे ज्ञान से निर्णय नहीं किया, तो वो ज्ञान स्वयं प्रकाशक स्वभाव से है। ये जहाँ सिद्ध हो जाता है तब फिर ये मेरे को मैं ही ज्ञाता, मैं ही ज्ञान और मैं ही देह सिद्ध हो जाता। तो कौन अज्ञानी से ज्ञानी, अरे देवी कहाँ खड़ा रहता, वो तो ऐसा नहीं मानने वाला नहीं जानने वाले को ज्ञानी कह रहे थे। अभी इससे आगे अपन देखते हैं उसमें ये बात भी है। अगले चलक में 272 निकला देखो इसको पढ़ते हैं। क्वचिल सति मेचितम क्वचिन मेचिका मेचितम क्वचित पुनर्मेचितम सहज नीव तत्व मम तथा न विमोहति अमल मेघ शांत मना परस्पर प्रकट शक्ति छत्र आत्मा अनेक प्रकार से दिखाई देता है। तथापि यथार्थ ज्ञानी निर्मल ज्ञान को नहीं भूलता, इस अर्थ का काव्य कहते हैं। ज्ञानी कहता है, कौन कह रहा है, ज्ञानी कहता है, क्या कहता है, मम तत्वम सहजम एव, मेरे तत्व का ऐसा सहजी स्वभाव ही है कि क्वचित नेकम लसति, कभी तो है आत्म तत्व नेकत अनेका काल अशुद्ध दिखाई देता है। ये नेकत के दो भाव है, अनेका काल रूप अथवा अशुद्धता भेद रूप खंड रूप जितने भी इसमें लेना है वो शब्द उसमें नेकत में अनेकाकार अशुद्ध ये दिखाई देता है। कभी तो ऐसा लिखा है ना, प्रयास को उसको देखेगा तो ऐसे ही दिखाई देगा उसको। और क्वचित नेकत अमेकम, कभी नेकत अमेकत दोनों रूप दिखाई देता है, माने कभी अनेकाकार एकाकार, कभी अशुद्ध और शुद्ध ऐसा दिखाई देता है। पुनः क्वचित अमेकम और कभी अमेकत एकाकार शुद्ध दिखाई देता है। तथापि परस्पर सुसंहत प्रकट शक्ति चक्रम सुरक्षक परस्पर सुसंहत सुमिलित सुग्रथित प्रकट शक्तियों के समय रूप से मैंने जिसमें में तितर बितर नहीं हो सकती ऐसी परस्पर एक में सुगठित प्रकट शक्तियों के समूह रूप से इसमान वह आत्मसत्व जल ज्योति स्वरूप जिसको बैंक्री का बोले ना जास्त जी वो थे ध्यान जाए जरूर प्राप्त थे वो यहाँ इतना प्रकट शक्तियों के समूह रूप इसमान वह आत्मसत्व अमल में किसान मना अमल माने निर्मल बुद्धि वाले जीवों से मन को न विमोहती विमोहित भ्रमित नहीं करता। एक भ्रमित का एक देखो भावार्थी पढ़ लेते हैं फिर आपको उसका दृष्टांत से बतलाते हैं। आत्मसत्व अनेक शक्तियों वाला होने से किसी अवस्था में कर्मोदय के निमित्त से अनेकाकार अनुभव में आता है, किसी अवस्था में शुद्ध एकाकार अनुभव में आता है और किसी अवस्था में शुद्धा शुद्ध अनुभव में आता है। तथापि यथार्थ ज्ञानी स्यादवाद के बल से बल के कारण भ्रमित नहीं होता, जैसा है वैसा ही मानता है, ज्ञान मात्र से स्थित तो नहीं होता। एक व्यक्ति गांव से दूसरे गांव जा रहा बीच में नदी पड़ी और वहां पर उसने देखा कि यहाँ नहाए धो पानी पिए जो भी किया दर्शन, तो जहाँ पर घाट पर गया वहाँ पानी बिल्कुल शांत था और स्लो बहाव होगा उसको उसने अपना चेहरा भी दिख रहा और ध्यान से देखता है तो उसने कलेसी में एक रत्न चमक रहा, एक रत्न पड़ा चमक रहा। तो वो इधर उधर देखता है कोई और को नहीं ना के लिए रत्न को ले ली, वो उतरता है उसमें और उसको पकड़ता है लेकिन कुछ पकड़ नहीं है, कुछ है ही नहीं है। फिर बार बार थक गया तब तक कोई दूसरा व्यक्ति आ गया तो फिर आखिर उसको मजबूरी कहना पड़ा देखो कैसा बहाने का भैया मेरे रत्न गिर गया है मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ आप निकाल दो। तो पानी फिर हुआ तो वो देखता है कि रत्न दिख तो रहा है चमक रहा है चमक रहा है, इतने में उसकी पोजीशन ऑटोमेटिक बदली किसी रत्न की, तो वो दूसरे व्यक्ति का ध्यान गया पास में जो धार है उसमें नाग बैठा और उसकी मणि चमक रही है। तो बोलो वहां पानी में मणि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है कि नहीं मणि पहले रत्न, फिर तीसर बोलो है कि नहीं उसमें निषेध किया जा सकता है। तो केवल केवल जानना लोका लोग पूरा है कि नहीं है कि कुछ कम है नहीं है। तो अपने ज्ञान में सारे पांच इंद्र के विषय ये हैं, मन के द्वारा और अनुमेय बना लुआ ये है कि नहीं, किस प्रकार है बोलो। जब उसने कहा देख तो उधर है मणि वहां गिला करेगा वो, ऐसे ही इस ज्ञान में अरे सारा लोकल लोग झलके आज बताया था ना अपने जीवन में कि शीतलता और स्वच्छता और स्वच्छता में झलक रहा है लोकल। अरे आचार्य ने अपने आप से लिखिया न्याय ने स्यादवाद केवल ज्ञान है वस्तु तत्व प्रकाश ने वेदा साक्षात असाक्षात या वस्तु अन्यतम है। स्यादवाद का दूसरा नाम है श्रुत ज्ञान और नया नाम है अनेकान स्वरूप वस्तु। स्यादवाद माने द्रव पर्याय वस्तु आत्मवस्तु पूरा ऐसा ज्ञान में प्रमेय यही बनता है। तो कहा फर्क केवल ज्ञान में और श्रुत ज्ञान में, वो श्रुत ज्ञान भाव श्रुत ज्ञान जिसमें स्वर का ईश्वर प्रकाशन उपनाथ ने आत्मा का अनुभव रूपान किया कि सचमुच आत्मा मेरे ज्ञान का जीव था है और सदा काल रहेगा, मैं ही जानने में आ रहा हूँ जानने में आता हूँ, अन्य का कहना वो मात्र उपचार कथन मात्र है क्योंकि मेरी पर्याय मुझे जानने में आती और मेरी पर्याय में जो जो ताकत है जो भी झलकेगा वो भी जानने में आएगा, ऐसा सहज स्वभाव है। तो उसके लिए ये दिन को जो लगता है जो अभी समझाया जा रहा है कि मेरे लिए क्यों झलक रहे तो मैं उस ज्ञान को पहुंच दूं, पहले गलत था। जो गेहूं से ज्ञान होना मानता है तो उसको क्या लिखा है अमृतचंद्र आचार्य ने 248वां कलश में, अज्ञानी के ज्ञान को तो गेह की गई
देह होगा तो ज्ञान होगा। तो बौद्धों की ये मान्यता है। बौद्ध कहते हैं हमने आप खोलिए घड़ी दिखी, आप दिखी, तो वो कहता नहीं उसके कारण आपको ज्ञान क्या हुआ प्रकट होता है। वो देह से ज्ञान पर्याय पैदा होती है, फिर ज्ञान पर्याय उस देह को जानता है, उसको कहते हैं तदुत्पत्ति सदाकार तदभ्योता। समझी चले किससे उत्पन्न होता है ज्ञान पर्याय? बौद्धों की मान्यता है अर्थापत्ति पदार्थों से होता है। ये मोटी भूल है और वो पर्दे हैं जिनमें ज्ञान नहीं, और स्वयं सिद्ध ज्ञान स्वामी करके अपने को अपने से नहीं जानता और कहता है कि हम पर को जानते हैं। तो आचार्य कहते हैं जिसमें स्वयं ज्ञायता नहीं है उसको पर ज्ञायता हो नहीं सकती, वो भ्रम उसको वो कहता है। अर्थात सबको स्वयं स्वयं जानने में आ ही रहा है, इसलिए ये बात इसको गंभीरता से विचार करना पड़ेगी कि कवि में अशुद्ध दिखता होने का, कवि एकाकार कवि कुछ, ये सब तेरे ज्ञान की कल्लोलों में पूरी जानने जा रही, और ज्ञान की सुहास संपदा है वो कोई विवाह विकार नहीं है ज्ञान का, और अपने को अपने पर्याय में आती है, अन्न तो आ ही नहीं सकता। अगर हम जो पदार्थ व्यंजन खाते पीते हैं और कहते हैं खट्टा है मीठा है ये गर्म है ठंडा है, तो क्या अपना ज्ञान खट्टा मीठा सड़पड़ा कड़वा कसायला हो जाता है? अज्ञानी का हो जाता है, बाबू ज्ञानी का नहीं होता, अज्ञानी का होता है। ज्ञान गर्म ठंडा होता है, उल्ला जी छूटा ही नहीं, वो चिड़िया जो बाहर और दर्पण में है, बस ये तो ज्ञान की स्वच्छता है और उसमें स्वपर प्रकाशन ही खुद चल रहा है। यही तो कहो महान काल रत्न को पूज्य गुरुदेव श्री जैसा महात्मा मिले उनकी वाणी नहीं तो कौन समय कार में थी मरण खोल के हथेली कर। इसी अधिकार में इसमें संवर अधिकार में आया है जैसा मैं चाहती हूँ कि टीका में क्या चतुर्थ काल में संवत्सर में विराजमान केली भगवान हथेली पर कर आत्मा को दिखाते थे, दिखाते अपने भरतवा कक्षण भी वो भी आत्मा का स्वरूप देव ध्वनि के द्वारा कहते चले जाते हैं चले जाते हैं। इस समय वो ऐसी और कोई भी उससे अपने स्वास्थ्य को पकड़ ले समझ लेते, तो इस प्रकार उससे हम अपने को समझकर अपने शुद्ध ज्ञान में केवल ज्ञान की अपेक्षा करो और प्रथम वेदन की अपेक्षा प्रत्यक्षात्मक अनुभव कर ले सिद्ध किए, वो स्वसंवेदन ही जीव का ज्ञान का लक्षण है। तो इस प्रकार से यहाँ जो कहा ये निर्मल बुद्धि वालों के मन को भ्रमित नहीं होता कि मुझे कभी क्या ठंड लगती है, ज्ञानी को लगती है अज्ञानी को, तो समय सार की जाकर बांध कर तेरा अंदर देख लेना एक ही दर्शन दिया के ज्ञानी भी इलाज करता है नहीं करता है? नहीं करेगा वो, और अज्ञानी भी करता है, वो मानता है ज्ञान ठंडा हो रहा है ज्ञान, और उसको वो जानना तो ज्ञान का स्वभाव। तो वहां पर निष्कर्ष निकला अमृत चंद्राचार्य जी ने अज्ञानी से ज्ञान का अज्ञानत्व क्या है, अज्ञानी से ज्ञान का अज्ञानत्व क्या है कि वो ठंडा ज्ञान हो रहा है, ज्ञान और ठंडा उसको जिसको वे का जो स्वरूप है ठंडा गर्म पुद्गल का धर्म की अवस्था ज्ञान में तो ज्ञात होगा लेकिन वो ज्ञान और देह को एक में करते मन इससे अज्ञानी से ज्ञान का अज्ञानत्व। और ये दृष्टांत देकर 93 गाथा में कहा कि ज्ञानी के ज्ञान का ज्ञानत्व क्या है, ज्ञानी का ज्ञान सम्य ज्ञान क्यों है, क्यों है बताओ? दोनों को भिन्न जानता है, उसमें उसका स्वस्वामीपना नहीं है, कमजोरी है उसका इलाज करता है ऐसा है, लेकिन एक तो उस रूप ज्ञान और उसको पर जी को एक लेख करके देता है, इतना ही भ्रम का निवारण हो जाए तो आचार्य कहते खरे खर ये ज्ञात संबंध भी नहीं है। ऐसा लिखा प्रशंसार गाथा 200 की टीका में जैसनाचार्य ने लिखा निश्चय से ज्ञान का जीवों के साथ कोई संबंध नहीं, निश्चय से लिखा है टीका में जैसनाचार्य उचित थी और अमृतचंदाचार्य ने लिखा उसकी टीका में अनिवार्यता है कि देह ज्ञान में जल गए मानो सीमित हो गए हों प्रमिष्ट हो गए हों और क्या क्या शब्द उसमें डाले देखिए ना सीमित हो गए खंडित हो गए शब्द खंड और फिर उसके बाद भी शब्द इतना प्यारा डाला है कि इस आत्मा को कुछ नहीं हुआ है मात्र निज आत्मा को अन्यथा जाना माना गया है। आत्मा को अन्यथा जाना माना गया किसके द्वारा मोह के द्वारा मोह महामदती होना दी भूल आपको भ्रम समा दी हर इस प्रकार की घटना में इस जीव ने आप अपने ऊपर घटा अनंत काल निकल गया। तो ज्ञान जैसा मात्र अपनी एक बहुत बड़ी सामर्थ्य प्रकट संधि संकेत पर्याप्त पर्याप्त इतना उजाला जिसमें शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान जैसा सब कुछ ज्ञान देख सकता है उसी जाति का अनुभव कर सकता है। इसलिए वहाँ पर प्रशंसार में भाई अद्भुत व्याथाएं आई है तो इसलिए कहता हूँ क्योंकि परिणामी विकल टू अपरिणामी सब प्लस परिणाम की बात चल रही और उसमें यही सिद्ध किया गया तो उसमें 33 नंबर की गाथा वो मैं बोल के ही समाप्त करूंगा आपका एक हो गया टाइम उसमें ये बात कही बहुत जानने की आकांक्षा के शोक से बस करो मुझे ये जानना ये जानना फिर क्या करें तो आचार्य लिखते हैं जो ही सुधैन बजान दिया पाणम जानक सहारे ने तब श्री तेवी को भक्ति लोयज्ञ दी दिया जो निज आत्मा को जय स्वामी जानता है उसको लोक के प्रकाशक ऋषिश्वर न सुखसेवनी कहती है और उसकी टीका में लिखते हैं आचार्य जैसे भगवान मानी केवल ज्ञान युग पर भ्रमण करते हुए समस्त कृष्ण विशेषों से युक्त केवल ज्ञान के द्वारा साधन वहां पर हमेशा ज्ञान पर्याय है पूरे दिना केवल ज्ञान के द्वारा कैसा केवल ज्ञान युग पर अक्रम रूप से लोकालोक को जान रहा और सर्व चैतन प्रकट हो गया और किसको जानता है एक अनादि निधन निष्कारण असाधारण स्वसंवेदमान चैतन्य सामान्य जिसकी महिमा है ये इतना तथा जो चेतक स्वभाव के द्वारा केवल अकेला केवल शब्द में केवल अकेला निर्वेल अखंड शुद्ध है ऐसे आत्मा को आत्मा से आत्मा में अनुभव होने के कारण में खेल नहीं है ये मूल टीका का पढ़ना अमृत चंद्राचार्य तथा एम जनों की उसी प्रकार हम भी ऐसा लगा है क्रमशः पन में छोटे हुए कुछ केवला चैतन्य विशेषों से युक्त श्रुत ज्ञान के द्वारा वो भाव श्रुत ज्ञान भेद ज्ञान के द्वारा उसी एक अखंड अनादि निधन निष्कारण असाधारण ससंवेदमान चैतन्य सामंज की महिमा है तथा जो चेतक स्वभाव से जायक स्वभाव चेतक होने के कारण केवल अकेला निर्वेल अखंड शुद्ध है ऐसे आत्मा को आत्मा से आत्मा में अनुभव के कारण सुनते ही और बहुत जाने की आकांक्षा के छूट से बस करो ऐसा लिखा और उसके बाद चौतीसवीं गाथा में आकर कह दिया मति श्रुति उपाधि छोड़ दो तो अनुभव के काल में अल्पत्व सर्वज्ञ शून्य है ऐसा संस्कृत गीता में लिखा बोलो। इसलिए जब कहते सिद्धों की जाति जैसा दुख का संवेदन हम आपको हो सकता है बशर्ते कि हम क्या करें जो भेद ज्ञान कराया जा रहा है मैं ही जाता मैं ही ज्ञान में ही ये इस बात को मुक्त करके अपने स्वरूप को देखें तो ये सब सरल और सुलभ है। ओम